ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर जिले में 23 जनवरी से लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, मंत्री परिषद ने लिया निर्णय। आरएसएस प्रमुख सर संघ चालक मोहन भागवत आज एम्स रायपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। अभनपुर के सोनपैरी गांव में आयोजित हिंदू सम्मेलन को भी किया संबोधित। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित तिथियों की घोषणा की। और स्वदेश दर्शन योजना के तहत कल भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमि पूजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्री परिषद ने तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रूपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदने का निर्णय लिया है। मंत्री परिषद ने इसके लिए ऋण लेने राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी है।
तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 5500 रूपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई।
एक अन्य फैसले में मंत्री परिषद ने उसना चावल की मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। मंत्री परिषद ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। बैठक में प्रदेश में राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर दिए जाने वाले स्टाम्प शुल्क को घटाकर 0.05% कर दिया गया है। श्री साव ने बताया कि मंत्री परिषद ने रायपुर जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया है।
मंत्री परिषद द्वारा रायपुर महानगरीय जिला पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे रोजगार और कैरियर के साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी भी समझें। डॉक्टर भागवत ने युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को गंभीर चिंता का विषय बताया। इसके बाद डॉक्टर भागवत अभनपुर के पास सोनपैरी गांव में आयोजित हिंदू सम्मेलन में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कार्य करते हुए 100 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए पूरे देश में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है।
संघ के कार्य को 100 साल पूरे हुए, इसलिए हिंदू सम्मेलनों का आयोजन मंडल स्तर पर सर्वत्र हिंदू एकत्रित आने वाले हैं। संघ का कार्य जो नागपुर के मैदान में एक छोटी सी शाखा के रूप में शुरू हुआ, वो आज सर्वदूर देश में चल रहा है। संघ के स्वयंसेवक इस देश में कहीं भी जाए, जहां भारत वर्ष है वहां संघ का काम है, संघ के स्वयंसेवक।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संत असंग देव जी थे। वहीं कल 1 जनवरी को डॉक्टर भागवत सामाजिक सद्भावना बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में विभिन्न समाजों के प्रदेश प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के तहत 224.57 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि की पहली किस्त जारी कर दी है। यह अनुदान राज्य की 11,289 पात्र ग्राम पंचायतों, 138 जनपद पंचायतों और 26 जिला पंचायतों के लिए जारी की गई है। केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने की सिफारिश की जाती है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर से 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों से प्रदेश के 18 जिलों के 2100 से अधिक गांवों और बसाहटों तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए अब इलाज और जांच की सुविधा गांव में ही उपलब्ध होगी।
आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और विशेषकर विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति बीबीटी जी, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं, पांच जाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं और मात्र 2,30,000 की इनकी आबादी है और ये पीबीटी जी के लोग तो समाज के सबसे अंतिम छोर के लोग हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य भी नहीं पहुँच पाता है, लेकिन आज 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रथम किस्त में आया है और आने वाला है। 25 तरह के बीमारी का इलाज होगा, हर तरह की दवा उनको निशुल्क दी जाएगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। स्वदेश दर्शन योजना के तहत कल 1 जनवरी को भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमि पूजन किया जाएगा। लगभग 146 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का भूमि पूजन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। पर्यटन कॉरिडोर के निर्माण से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं सड़क, पार्किंग, व्यू प्वाइंट, पर्यटक सुविधा केंद्र, सौंदर्यीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं में भी इजाफा होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित तिथियों की घोषणा की है। सीबीएसई के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षा जो पहले 3 मार्च को निर्धारित थी वो अब 11 मार्च को आयोजित की जाएगी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा 3 मार्च के स्थान पर अब 10 अप्रैल को होगी। बोर्ड ने बताया कि प्रशासनिक कारणों से तिथियों में बदलाव किया गया है। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के नेतृत्व में न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी, संवेदनशील और समयबद्ध बनाने की दिशा में लगातार और समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इनका परिणाम भी नजर आने लगा है। 1 जनवरी 2025 को उच्च न्यायालय में 84,300 से अधिक प्रकरण लंबित थे, लेकिन वर्ष के अंत में इनकी संख्या में लगभग 10% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। श्रोताओं, भारत ने वर्ष 2025 में ऐसी सांस्कृतिक ऊर्जा के साथ प्रवेश किया जो पिछले एक दशक से लगातार मजबूत हो रही थी, लेकिन इस वर्ष जिस आत्मविश्वास और व्यापक स्तर पर भारत ने अपनी सभ्यतागत पहचान को दुनिया के सामने रखा उसने सभी को चकित कर दिया। पवित्र स्थलों की मान्यता से लेकर वैश्विक संस्थाओं द्वारा भारतीय परंपराओं को स्वीकार किए जाने तक वर्ष 2025 वो साल बन गया जब संस्कृति हाशिए से निकलकर राष्ट्रीय पहचान के केंद्र में आ गई। छत्तीसगढ़ राज्य साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने कहा कि इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ, अयोध्या में ध्वज अनुष्ठान और दीपावली को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिलना ऐतिहासिक कदम है।
इस साल प्रयागराज में जो एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ है जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जाकर डुबकी लगाया और बिना किसी अव्यवस्था के, तो मुझे लगता है कि ये 2025 के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला एक बहुत बड़ी घटना है। और अयोध्या में एक धार्मिक जो अनुष्ठान होता है जिसमें ध्वज लगाने का, उस ध्वज लगाने का जो संयोग बना है वो भी 2025 में बना। दीपावली, उसको यूनेस्को ने मान्यता दी है, उसको धरोहर के रूप में माना है, वो एक बहुत बड़ी घटना है 2025 की।
श्रोताओं, इस पूरी बातचीत को आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज रात 9:15 से 9:30 तक प्रसारित किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने सुकमा और बीजापुर जिले के लिए 300 पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। इनमें 255 पद पुरुष और 45 पद महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए थे। सीआरपीएफ के डीआईजी एसपी सिंह ने बताया कि भर्ती परीक्षा आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा अवसर साबित हुई है।
जो विशेष भर्ती केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ नवंबर दिसंबर 2025 में किया गया, उसमें लिखित परीक्षा और मेडिकल के बाद अब मेरिट लिस्ट हम जारी कर रहे हैं, जिसमें सुकमा बीजापुर के ट्राइबल यूथ के लिए रिमोट दूर दराज के बच्चों की भर्ती की गई। इसमें 15% महिला कैंडिडेट्स हैं और 85% पुरुष अभ्यर्थी हैं।
सड़क सुरक्षा की गंभीरता, चुनौती और नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 1 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। 31 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह के दौरान राज्य के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल शाम रायपुर में उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की उपस्थिति में हेलमेट और बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। सुकमा जिले के उरसांगल कैंप स्थित गोंदपल्ली के जंगल से सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और भारी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है। इनमें एक राइफल, 3 भरमार बंदूक, 1 12 बोर की बंदूक और करीब 400 कारतूस तथा मैगजीन शामिल है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। निमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉयडल सूजन रोधी दवा है। इसका उपयोग तीव्र दर्द के उपचार में किया जाता है। और राज्य पुलिस सेवा के 16 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर जिले में 23 जनवरी से लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, मंत्रिपरिषद ने लिया निर्णय। आरएसएस प्रमुख सर संघचालक मोहन भागवत आज एम्स रायपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। अभनपुर के सोनपैरी गांव में आयोजित हिंदू सम्मेलन को भी किया संबोधित। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित तिथियों की घोषणा की। और स्वदेश दर्शन योजना के तहत कल भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमि पूजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।